नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो की ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित है। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के Zone 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सहनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की थी। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ